Y la ley.
Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो सूरह अनआम की हम आयात नंबर 82 से लेकर के 89 तक के खुलासे तफसीर हम पढ़ना शुरू कर चुके थे कल की क्लास में, मारफुल कुरान की जिल्द नंबर 3 में से। खुलासे तफसीर हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई तफसीर बयानुल कुरान से यहाँ पर नकल फरमाई है। और इसको जो यहाँ पे हजरत लिखते हैं, तो जो अंडरलाइंड वर्ड्स होते हैं तहत-उस-सुदूर, ये जो है तर्जुमा होते हैं, और फिर उनके दरमियान बैनुल कौसैन यानी विद इन ब्रैकेट्स ये तफसीर होती है। थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी तफसीर है, कहीं कहीं पे थोड़े से ज्यादा जुमले हजरत लिखते हैं, वरना आमतौर तो पर ये बस मुख्तसर तफसीर ही है। तो इस तरह की तफसीर जो है वो बहुत शुरू के जमान में तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन जो तफसीर जलालैन है वो भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट के ऊपर ही की गई है। लेकिन फिर बाद के जमाने की जो तफासीर हैं तो उसके अंदर ज्यादा तफसील बयान की गई, तो फिर वो इस तरह से तर्जुमे के दरमियान में नहीं, बल्कि तर्जुमा करके फिर उसके बाद अलग से तफसीर जो है वो फिर मशायख ने बयान करी। ठीक है, तो ये जो बयानुल कुरान है इसमें तर्जुमे के साथ साथ ही दरमियान दरमियान में ही तफसीर हजरत लिखते हैं। तो इसको हम पढ़ना शुरू कर चुके थे कि हजरत ने लिखा कि जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अपने इस ईमान को शिर्क के साथ मखलूक नहीं करते, खलत मलत नहीं करते, मिक्स नहीं करते, ऐसों ही के लिए कयामत में अमन है। ठीक है, यलबसू का लफ्ज, इसके बारे में कल काफी बात हुई थी कि जो लिबास होता है ना वो बिल्कुल चिपका हुआ हुआ होता है इंसान के साथ ना, तो बिल्कुल इसी तरह से किसी भी चीज का लिबास जो है वो उसके साथ बिल्कुल लगा हुआ होता है, वो उससे जुदा नहीं होता। बिल्कुल यही मामला होता है जैसे कि खलत मलत करना किसी चीज को होता है ना, तो वो भी आपस में जुड़ जाती है, चिपक जाती है, मिक्स कर देना भी इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं। तो ईमान को शिर्क के साथ मिक्स नहीं करते, ठीक है, हमारी इंडो लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश प्लस उर्दू लैंग्वेज जो है उसके अंदर इसको हम मिक्स करना कहेंगे, तो ऐसों ही के लिए कयामत में अमन है। और वही दुनिया में राह रास पर चल रहे हैं और वो सिर्फ मुवाहिदीन हैं, बखिलाफ मुशरिकीन के, यानी जो अल्लाह ताला की तौहीद के कायल हैं कि अल्लाह ताला जो है वो असल है, अल्लाह बस बाकी अबस, ठीक है, अल्लाह ही है और बाकी सब जो है वो अल्लाह ताला की वजह से हैं, अल्लाह ताला की मखलूक हैं जो अल्लाह ताला ने तख्लीक करी है, ठीक है, और अल्लाह ताला के कोई भी मददगार नहीं है, शरीक नहीं है अल्लाह ताला की मिल्क के अंदर। तो इसको तौहीद कहते हैं, और तौहीद का की जिद क्या है, वो है शिर्क। ठीक है, तो ये फरमाया कि सिर्फ मुवाहिदीन है बखिलाफ मुशरिकीन के, गो बिल माना अल लुगवी खुदा पर ईमान रखते हैं, यानी ईमान का के, यानी एक तो लुगवी मानी हो गया ना, ठीक है, तो लुगवी मानी के एतबार से तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं क्योंकि खुदा के कायल हैं। क्या मतलब कि अल्लाह है, ये इस बात पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह है, ठीक है, जैसे कि हम जुबान के अंदर जो है ना, वो किसी चीज के मौजूद होने का कायल होना, इसको भी हम कहते हैं कि भाई ईमान, इस बात पर ईमान है। तो लघवी माने के अतबार से तो खुदा पर ईमान रखते हैं, लिटरल मीनिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन शिर्क भी करते हैं जिससे ईमान शर्ई मनफी हो जाता है। तो ईमान शर्ई क्या चीज? ईमान लघवी की तो बात हो गई कि हाँ भाई मौजूदगी का इकरार करना, ठीक है, लेकिन शर्ई ईमान क्या होता है? शरीयत जो है वो अल्लाह ताला के हुक्मों को कहते हैं, ठीक है, वो हुक्म जो कि नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से हम तक पहुंचे हैं, तो उन हुक्मों को जो है वो अल्लाह का हुक्म कहा जाता है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह का हुक्म ही हम तक पहुंचा, और उनको शरीयत कहा जाता है, उनके मजमुए को शरीयत कहा जाता है। तो उसके अंदर क्या है कि भाई अल्लाह ताला जो है ना वो वाहिद है, वहदहू ला शरीक है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं अल्लाह को मानोगे तो फिर अल्लाह ताला के मानने की नफी हो जाएगी, ठीक है, तो ईमान शरी जो है वो मनफी हो जाता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई है आप उसका इकरार कर नहीं रहे, आप अपनी तरफ से जो है वो सही गलत की तारीफ अपनी तरफ से बना रहे हैं, ठीक है भाई, सही गलत की तारीफ जो है वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे ना, तो अगर आप सल्लम की नफी कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप ईमान शरी नहीं है आपके पास, ठीक है। जब मुवाहिदीन काबिल अमन हैं सो इस सूरत में खुद तुम डरो, खुद तुम डरो ना कि तुम मुझको डराते हो, ठीक है, काबिल अमन यानी अमन तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात देती है, और वो किसको अमन देती है? जो अल्लाह ताला को वाहदहु ला शरीक मानते हैं, जो नहीं मानते तो उनको डरना चाहिए ना, मुझे क्यों डराते हो, हालांकि ना तुम्हारे आलिहा डरने के काबिल ना मैंने कोई डर का काम किया है, ठीक है, कि अल्लाह मुझे, अल्लाह जो के सही मानों में तकलीफ पहुंचा सकता है, तो मैंने तो वो अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ कोई काम किया ही नहीं है, तो अल्लाह ताला से मुझे क्यों तकलीफ पहुंचेगी, ठीक है, और तुम्हारे जो माबूद बातिना हैं तो वो तो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी को तकलीफ पहुंचा सके, और ना दुनिया का खौफ काबिल एतबार, और तुम्हारी हालत तीनों एतबार से महल खौफ है, यानी मुझे किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, हालांकि तुम्हें जो है ना वो हर तरीके से डरने की जरूरत है, क्योंकि तुमने अल्लाह की नाफरमानी करी है, ये है रीजन टू बी स्केयर्ड, द रीजन टू बी स्केयर्ड ऑफ इज कि अगर अल्लाह को नाराज किया हुआ है, ठीक है, तो हम, हमें भी इससे सीखना चाहिए, समझने की जरूरत है कि हमें अल्लाह के नाराजगी का खौफ होना चाहिए, ना ये कि उल्टे सीधे दूसरे वसवसे जो है वो लगे हुए हैं या दूसरे ख्याल लगे हुए हैं, किसी दूसरी की नाराजगी का खौफ, किसी दूसरे के हमें नुकसान पहुंचा देने का खौफ, ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्लाह के नुकसान पहुंचाने का खौफ जो है वो जरूर होना चाहिए कि भाई अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नेमतें दी हुई हैं, लेकिन अल्लाह ताला इन नेमतों को मुझसे वापस भी ले सकते हैं, इसी को तो नुकसान कहते हैं ना, कभी कोई नेमत आपसे वापस चली जाए, जैसे किसी का हाथ टूट जाए, ये नुकसान हुआ ना कि नहीं हुआ, हाथ टूट गया, ठीक है, तो भाई हाथ क्या है? अल्लाह की दी हुई नेमत, अगर अल्लाह ताला इस नेमत को वापस ले लें, यानी हाथ टूट गया हमारा, तो फिर ये नुकसान हो जाएगा ना हमारा, तो इससे डरना चाहिए, खाली इससे नहीं कि हाथ टूट गया, बल्कि इससे कि अल्लाह ताला ने हाथ की नेमत मुझसे वापस ले ली, ठीक है, अल्लाह की तरफ तवज्जो, अल्लाह ने मेरे हाथ की नेमत वापस ले ली, अल्लाह ने मेरे अगर किसी और नेमत को मुझसे वापस ले लिया तो फिर मेरा क्या बनेगा, यानी नुकसान को भी जोड़ना ना, ठीक है, कि भाई अल्लाह ताला ने अगर मेरी नेमत वापस ले ली तो फिर मुझे नुकसान पहुंचेगा, बस अल्लाह के बगैर नहीं कि मुझे नुकसान पहुंच गया तो क्या होगा, मेरा ये हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, वो नाराज हो गया तो क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, यानी सारी हम डिस्कशन करते रहते हैं, सारे हम अल्फाज बोलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का ना तो जुबान पे जिक्र आता है, ना अल्लाह ताला का हमारे दिलो दिमाग के ऊपर कोई जिक्र आता है, ऐसा तो ईमान वाले को नहीं होना चाहिए। अच्छा, और फरमाया कि और ये हुज्जत जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद पर कायम की थी, ठीक है, ये दलील कायम करी थी, ठीक है, ये हमारी दी हुई हुज्जत थी, अल्लाह ताला ने इसका अपनी तरफ मंसूब कर दिया कि ये हमारी दी हुई तिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहिम अला कौमिही आतैनाहा, हमने दिया था इब्राहिम को उसके कौम के ऊपर इस हुज्जत को, वो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के मुकाबले में दी थी, यानी वो खुद नहीं उनको मिल गई थी बल्कि हमने दी थी। जब हमारी दी हुई थी तो यकीनन आला दर्जे की थी। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या तख़सीस है, हम तो जिसको चाहते हैं इल्मी व अमली मर्तबों में बढ़ा देते हैं, नरफ़ऊ दरजातिम मन नशा, यानी मन से जो है ना वो उमूमियत, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही को नहीं खाली हमने हुज्जत दी थी बल्कि जिसके पास भी जो हुज्जत होती है वो हम ही उसको देते, ठीक है, यानी जो भी दलील होती है, जो भी इल्म होता है, जो भी उसके पास नेमत होती है वो हमारी यानी अल्लाह ताला की ही दी हुई होती है, ठीक है। इस वजह से हम कभी भी अपने इल्म के ऊपर, अपने दलाइल के ऊपर, अपनी लॉजिक के ऊपर और अपने जो है वो मेहनतों के ऊपर, अपने वसाइल के ऊपर, हत्ता के अपनी तौफीक के ऊपर, कि मैंने बड़े नेकी के काम किए, मैंने बड़ी इबादत करी, मैंने बड़ा जो है वो दीन की खिदमत करी, हम किसी भी चीज़ के ऊपर नाज नहीं कर सकते, ठीक है, हम किसी भी चीज़ के ऊपर नाज नहीं, नाज करने का मतलब ये होता है इतराना, ठीक है, इतरा नहीं सकते। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला के यहाँ नाज नहीं चलती, नियाज चलती, नियाज नियाजमंदी, ठीक है, यानी आजिजी, इनकिसारी, इसके लिए नियाजमंदी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है उर्दू के अंदर। तो बस हमने बस नियाजमंदी के साथ ही सारी जिंदगी गुजार देनी है, चाहे कितना ही बड़ा कारनामा हमसे ना हो जाए, हमने फिर भी नियाजमंदी ही करनी है, क्योंकि यही हमारी औकात है और यही हमारे करने का काम है, इसी को बंदगी कहते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या हमने सबको ही जो है वो हुज्जत हमने ही दी, और जिसने जो है वो अच्छी वाली हुज्जत को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर लिया तो उसको हमने दुनिया और आखिरत की इज्जतें भी दे दी, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया और आखिरत की इज्जतें दे दी। चुनाचे सब अंबिया को ये रिफत दरजात अता फरमाई, यानी ये जो अपनी कौम के सामने दलील पेश करना ना, ये अल्लाह ताला ने सारे अंबिया को ये वाली सलाहियत अता फरमाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमा दिया कुरान मजीद के अंदर, बहुत सारे दूसरों का जिक्र नहीं फरमाया कुरान मजीद के अंदर, ठीक है, एक तो ये फर्क हो गया कि भाई उनका जिक्र फरमा दिया, बाकियों का जिक्र नहीं फरमाया, और दूसरा एक फर्क ये भी कह सकते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक खास मुकाम खिल्लत का, जिसको कि खलील बनाया, दोस्त वाला मुकाम भी अल्लाह ताला ने अता फरमाया, दूसरों को जो है वो उनके लिए दोस्त का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, खलील का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, वरना तो सारे ही अंबिया अल्लाह ताला के दोस्त थे, लेकिन एक होता है ना खास, आप एक लफ्ज किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसकी ज्यादा इज्जत हो जाती है, तो वो दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया, इब्राहिम इस्लाम के लिए खलील का लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान मजीद के अंदर, वो आयत में जबकि कुदरतन आज ही तिलावत में पढ़ी भी थी। अच्छा, इन्होंने कुछ कुछ लिखा है यहाँ पर ख्वातीन की तरफ कि क्या हम अल्लाह के अजाब से डरते हुए अल्लाह के अहकाम पर अमल करें तो ये हुक्म फोकस्ड होना होगा, यानी अल्लाह की रजा के लिए भी करें, लेकिन हमारी गालिब सोच ये है कि अजाब से डर रहे हैं तो ये नतीजा फोकस, तो ये नतीजा फोकस्ड होना होगा। भाई दोनों ही रीजन है ना, ठीक है, कि अल्लाह के अजाब से डरते रहना और अल्लाह ताला की जो है वो रजा को हासिल करते रहना, ठीक है, भाई अल्लाह के अजाब से जो डरेंगे ना तो अल्लाह ताला की रजा हासिल होगी, ये नहीं है कि अल्लाह की रजा के लिए कोई आपने अलग काम करना है, या अल्लाह की रजा के लिए जो है वो आपने अपनी एक होता है ना जैसे स्विच होता है ना स्विच, ठीक है, इधर स्विच करेंगे तो फिर जो है वो ये काम होगा, और स्विच को अगर इधर मोड़ देंगे तो फिर ये काम शुरू हो जाएगा, इस वक्त में दूसरा काम नहीं हो सकता, दूसरे वक्त में इसका पहला काम नहीं हो सकता, ठीक है, ये स्पेशली जैसे वॉशिंग मशीन्स वगैरह के ऊपर स्विच होते हैं ना, इस तरह के यूं करके स्विच कर देते हैं तो फिर वो जो है वो क्या कहते हैं वॉशिंग मोड में आ जाती है, फिर उसको स्विच कर देते हैं तो फिर वो रिंसिंग मोड में आ जाती है, ठीक है ना, जिस वक्त वो रिंस मोड में होती है वॉशिंग मशीन तो उस वक्त वो वॉश मोड में नहीं होती, और जिस वक्त वो वॉश मोड में होती है उस वक्त वो रिंस मोड में नहीं होती, बात समझ में आ रही है ना, वॉशिंग मशीन तो करी होगी, स्पेशली खवातीन की तरफ से सवाल है तो उनको वॉशिंग मशीन उम्मीद है चलाना आता होगा, ठीक है, तो वॉशिंग मशीन में एक मोड, एक वक्त में एक ही मोड चल सकता है, दूसरा मोड नहीं चल सकता। लेकिन ये हमारा नहीं है, हमारे ये मामला नहीं है कि एक वक्त में एक ही मोड चल सकता है, दूसरा मोड नहीं चल सकता। कि खौफ का मोड होगा तो उम्मीद का मोड नहीं होगा, उम्मीद का मोड होगा तो खौफ का मोड उस वक्त नहीं चल रहा होगा, पावर ऑफ हो चुका होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि हम खौफ के वजह से जो काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो है वो हमें अल्लाह ताला की रजा मिल रही है, ठीक है, तो रजा भी साथ साथ चल रही है और खौफ भी साथ साथ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक वक्त खौफ गालिब आ गया, गालिब आने का मतलब ये नहीं होता कि उम्मीद खत्म हो गई, बस खौफ डरे जा रहे हैं और क्या कहते हैं, ठुटरे चले जा रहे हैं, अजीब गरीब किस्म की कैफियत हुई हुई है और उम्मीद जो है ना वो बिल्कुल खत्म हुई हुई है, कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों साथ चलते हैं, ठीक है। अल ईमानु बैनर रजाए वल खौफे का मतलब ये नहीं है कि या तो इस स्विच पर होगा या उस स्विच पर होगा, बल्कि दोनों स्विच साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। बस ज्यादा से ज्यादा एक गलबा होता है, बस कि इसका गलबा ज्यादा हो गया है तो दूसरा जो है वो मगलूब है। गालिब मगलूब के अंदर याद रखें, गालिब मगलूब का मतलब क्या होता है कि दोनों एक साथ मौजूद है, दोनों एक साथ मौजूद, ठीक है। जबकि स्विच यस और नो के अंदर क्या होता है कि या तो यस एक वक्त में है या नो एक वक्त में है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। उम्मीद है कि इससे आपको समझ में आ गई होगी बात। तो बहरहाल ये एक ऐसे ही बस एक एकेडमिक किस्म का आपने सवाल कर लिया था, जवाब दे बस। आगे चलें कि चुनाचे सब अम्बिया को इरफत दर्जात अता फरमाई, बेशक आपका रब बड़े इल्म वाला बड़ी हिकमत वाला है, इन्ना रब्बका हकीमुन अलीमुन, ठीक है। हिकमत वाला, इल्म वाला तो है, ठीक है ना, अलीमुन का यहाँ पे हजरत ने लिख दिया बड़े इल्म वाला है, लेकिन हिकमत वाला, वैसे तो हकीम का मतलब होता है हिकमत वाला, तो इसको पहले लिखना चाहिए था, ठीक है, फिर बाद में जो है वो इल्म वाला लिखना चाहिए था, लेकिन हजरत ने शायद इस वजह से कि हिकमत वाला की थोड़ी सी हजरत ने तफसीर करनी थी तो हिकमत वाला बाद में लिखा, यहाँ से तफसीर के अंदर, क्योंकि हिकमत वाला की तफसीर क्या लिखी कि हर एक का हाल और इस्तेदाद जानता है, और एक बल्कि दोनों की तफसीर है एक्चुअली, सॉरी दोनों की, कोई अलग अलग नहीं है, दोनों की मिला करके तफसीर लिखी है कि अल्लाह ताला हर एक का हाल और इस्तेदाद जानता है, यानी इल्म में अल्लाह ताला कामिल है, ठीक है। सिर्फ जो है वो ऊपर से नहीं देख रहा, जिस तरह के जो कैमरा होते हैं ना, सीसीटीवी कैमरा होते हैं, तो वो ऊपर से देख रहे होते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, दिल का हाल तो नहीं देख रहे होते हैं ना कैमरे, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ऐसी बसीरत है और ऐसी इल्म है कि हाल भी जानता है और इसकी इस्तेदाद भी जानता है, और 100% श्योरिटी के साथ जानता है, अजम्पशन या गेस की बुनियाद पे नहीं किसी की इस्तेदाद को जानता है, बल्कि 100% जानता है, और हर एक के मुनासिब उसको कमाल अता, यानी जिसका जैसा हाल है, जिसका जैसा इस्तेदाद है, उसके मुताबिक उसको कमाल अता फरमाना, इसी को कमाल अता फरमाना कहते हैं। मिसाल के तौर पर आज के जमाने में जो है वो किसी की, यानी जो जरूरत है, ठीक है, वो जरूरत ये है कि भाई इंटेलेक्चुअली जो है ना वो हम क्लियर हों अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, और अगले बंदे को जो है वो इंटेलेक्चुअली हम कन्विंस कर सकें, ठीक है। तो इस वक्त का कमाल ये होगा कि आप इंटेलेक्चुअली अकली तौर पर और इल्मी तौर पर जो है ना वो बिल्कुल सही हो, ताकि आप अगले बंदे को जो है वो इस तरीके से बयान कर सकें। इस वक्त जो है वो लड़ाई, दंगा, फसाद, सॉरी बल्कि बल्कि इवन कताल करने का वक्त इस वक्त नहीं, इस वक्त नहीं, ठीक है। तो अब जो है ना वो, यानी किसी को जो है वो लड़ने झड़ने का जो है वो खूब सारा जो है वो कमाल अता फरमा दिया, लेकिन इस वक्त जरूरत ही नहीं थी लड़ने वाले कमाल की, इस वक्त तो भाई अकली कमाल की जरूरत थी। जब लड़ने वाले कमाल की जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त जो है वो लड़ने के काबिल जो कमाल चाहिए होगा तो उस वक्त वो वाला कमाल अता फरमाए, ठीक है। इस वक्त अच्छे खासे जो माशाल्लाह अकली तौर पर मेहनत करने वाले लोग हैं उनको अगर आप देखें तो जिस्मानी तौर पर इंतहाई कमजोर, जिस्मानी तौर पर इंतहाई कमजोर, सेहत के अतबार से भी कोई खास अच्छी हालत में नहीं होते, ठीक है। अगर उनको मैदान जंग में डाल दिया जाए ना, वो काफिर से नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है ना। आज का जो आलिम दीन है या दीन का मेहनत करने वाला है ना, वो काफिर से लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसके पास जो है वो इस किस्म का कमाल नहीं है, ठीक है। तो जिस वक्त जिस चीज के कमाल की जरूरत होती है ना, उस वक्त अल्लाह ताला वही वाला कमाल था। ईमान का मामला यस या नो का है, ये गालिब मगलूब नहीं हो सकता। जी बिल्कुल सही, आपने पॉइंट नोट किया, बहुत अहम पॉइंट था कि खौफ और उम्मीद का मामला तो गालिब और मगलूब का है, कि गालिब भी यानी दोनों मौजूद है, ठीक है, एक फीलिंग गालिब हुई भी है, एक फीलिंग जो है मगलूब हुई भी है, लेकिन ईमान और कुफर का ये मामला नहीं, कि ईमान जो है ना वो भी मौजूद है और कुफर भी साथ मौजूद है। हाँ ईमान गालिब है और कुफर मगलूब है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, वो यस और नो वाला ही मामला है, ठीक है। इसी वजह से ना आजकल जो तमाशे चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और दुनिया की मीडिया के ऊपर, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो दीवाने हुए हुए हैं, अक्सर अक्सर लोग बिल्कुल दीवाने हो गए हैं, ठीक है, तो वो यही समझते हैं कि गोया कि जो है ना बस ईमान की तो कोई मसला ही कोई नहीं है, ठीक है, उन्होंने हर चीज हर सारी की सारी जो क्या कहते हैं अहमियत जो है ना वो ईमान के अलावा सारी चीजों को दी हुई है, तो इसी वजह से तो उल्टी सीधी किस्म की अजम्पशंस लेके बैठे हुए हैं ईमान के बारे में, ठीक है, काफिर को ललकार देना ईमान है, तो काफिर का ललकार देना, अगर काफिर ने किसी को ललकार दिया तो इसका मतलब यह है कि वो ईमान वाला है, और जिसको काफिर ने नहीं ललकारा तो वो ईमान वाला नहीं है, ठीक है, तो ये अजीबो गरीब किस्म के हमारा ईमान के बारे में एब्सोल्यूट रबिश किस्म के जो है ना वो हमारे बने हुए हैं, तो इसकी हमें फिक्र करने की जरूरत है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इस वक्त मेहनत की जरूरत है, क्योंकि हमें ईमान का नहीं पता ये क्या चीज होती है, ठीक है, अजम्पशंस के ऊपर सारा का सारा तमाशा चल रहा है, और जाहिर फिर शैतान जो है वो हमसे खेल रहा है अजम्पशंस की बुनियाद पर, हमने अजम्पशंस में ही अपना दीन बिठाया हुआ है, ठीक है, तो आगे चलते हैं कि हमने और हर एक के मुनासिब उसको कमाल अता फरमाता है, ठीक है, जैसे उसकी हालात की जरूरत होती है वैसा उसको कमाल अता फरमाता है जिसको अल्लाह ताला कमाल अता फरमाना चाहता है, और हमने जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कमाले जाती इल्म व अमल दिया, कमाल जाती इल्म व अमल दिया यानी उनके इल्म व अमल में उनको कमाल अता फरमाया, इसी तरह कमाल इजाफी भी दिया कि उनके उसूल और फुरू से बहुतों को कमाल दिया, यानी उस उनके उसूल व फुरू में से बहुतों को कमाल दिया, यानी कि उनके ऊपर वालों को भी जैसे नूह अलैहिस्सलाम को कमाल दिया, ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो ऊपर नस्ल चलती थी तो उसमें नूह अलैहिस्सलाम आते हैं, और उनके ऊपर जो है वो आप और जाएं तो हमें शीश अलैहिस्सलाम का नाम मालूम है, और उनके ऊपर और चले जाएं तो हमें जो है आदम अलैहिस्सलाम का नाम मालूम है, तो इन लोगों को ऊपर भी कमाल दिया और नीचे भी, इसहाक व याकूब व यूसुफ व मूसा व हारून व जकरिया व याहया व ईसा, ठीक है, इन सबको भी हमने बहुतों को कमाल दिया, तो ये इजाफी कमाल हो गया जो कि उनकी जात में नहीं था, जात में तो अलग कमाल था, ये उनके उनके लिए एक एडिशनल कमाल उनको अता फरमाया, चुनाचे हमने उनको एक बेटा इसहाक दिया और एक पोता याकूब दिया, और इससे दूसरी औलाद की नफी नहीं होती, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम के अलावा भी उनके बेटे थे और इसहाक अलैहिस्सलाम के याकूब अलैहिस्सलाम के अलावा भी बेटे होंगे, लेकिन मशहूरी जो है वो चूंकि नबूवत सिर्फ याकूब अलैहिस्सलाम को मिली और इसहाक अलैहिस्सलाम को मिली, इस वजह से इनके नाम जो है, और दोनों साहिबों में से हर एक को तरीक हक की हमने हिदायत की, यानी शरीयत का इल्म भी इन दोनों को दिया क्योंकि इन दोनों को हमने नबी बनाया, तो और इब्राहिम से पहले पहले जमाने में हमने नूह अलैहिस्सलाम को, जिनका इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अजदाद में होना मशहूर है, यानी हम सब जानते हैं कि उनके ऊपर जो है वो नूह अलैहिस्सलाम शख्सियत गुजरे हैं, नबी गुजरे हैं, तो जिनका इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अजदाद में होना मशहूर है, और असल की फजीलत फराह में भी मुअस्सर होती है, यानी जो बड़ा कोई असर होता है ना तो फिर उसका असर जो है वो उसके नीचे वालों में भी आता है, ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर, कभी होता है कि किसी बाप का बेटा जो है वो गुमराह हो जाए, चाहे वो बाप कितना ही अजीम क्यों ना हो, जैसे लूत अलैहिस्सलाम का एक बेटा और नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा, ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा और लूत अलैहिस्सलाम की तो बीवी का मशहूर है, ठीक है, और याकूब अलैहिस्सलाम के जो बाकी बेटे थे दूसरी बीवी से जो थे, तो वो भी गलती का के मुर्तकिब हुए थे, बिलाखिर उन्होंने तौबा करी थी, लेकिन बड़े बाप के बेटे हुए थे लेकिन फिर भी बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो गए थे, बिलाखिर अल्लाह ने तौबा अता फरमाई। लेकिन वो आम उसूल ये है कि अगर बड़ा जो है वो नेक हो तो फिर उसकी नेकी का असर जो है वो बेटे में भी आता है, तो वही उन्होंने लिखा है कि असल की फजीलत फराह में भी मुअस्सर होती है, ठीक है। फराह मीन्स ब्रांचेस। अच्छा, तरीक हक की हिदायत की, यानी हमने इनको तरीक हक की हिदायत की वालों को भी, नीचे वालों को भी, और इन यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद लुगवी या उर्फी या शरई में से अखीर तक जितने मजकूर हैं सबको तरीक हक की हिदायत की। यहाँ पर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों में से अंबियाए बनी इसराइल के नाम लिखे हुए हैं ना, तो चाहे ये डायरेक्ट औलाद थी, लुगवी एतबार से कहा जाएगा कि डायरेक्ट औलाद थी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट औलाद को ही लुगवी एतबार से कहा जाएगा औलाद, या उर्फी एतबार से औलाद क्योंकि वो भतीजे थे या भांजे थे या पोते के भतीजे, पोते के भांजे या पड़ पोते के भतीजे, या ये डायरेक्ट ऊपर से नीचे नहीं आ रहे, लेकिन इस तरह से ये वो उर्फी एतबार से उनको भी औलादों में ही कहा जाता है, ठीक है। और शरीय एतबार से का मतलब ये है कि शरीयत में वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फॉलो करते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना इमाम मानते थे, ठीक है। तो तीनों एतबार से ने इन सबको जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद बनाया, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम को और उनके साहिबजादा सुलेमान अलैहिस्सलाम को और अय्यूब अलैहिस्सलाम को और यूसुफ अलैहिस्सलाम को और मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून अलैहिस्सलाम को तरीके हक की हिदायत की, यानी उनको हमने सीधा रास्ता दिखाया और उसके ऊपर चलने की तौफीक भी अता फरमाई, और जब ये हिदायत पर चले तो हमने उनको जजाए खैर भी दी, ठीक है। जब हिदायत पे चले तो हमने उनको जजाए खैर भी दी, व कदालिका नजजिल मुहसिनीन, हमने जजाए खैर भी दी इन एहसान करने वालों को, ठीक है। क्या मतलब भाई, मजे की बात तो यही है। किसका शेर है, हजरत मीर दर्द का, मीर तकी मीर का, या पता नहीं इनका है वो, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, ठीक, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, ठीक है। क्या मतलब कि किसी ने अपनी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दी, शहीद हो गया, ठीक है, तो उसके ऊपर शायर लोग भी तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं ना, कि भाई ये जो आपने जान अल्लाह के रास्ते में दी है तो ये जान कौन सी आपकी अपनी थी, है ना, कौन सी अपनी जान थी जो कि आपको कुछ मिलना चाहिए शहादत के एवज में, आपको कुछ जन्नत शन्नत मिलनी चाहिए, क्यों भाई, ठीक है, जिसकी दी हुई थी उसी ने वापस ले ली, आपको क्यों जन्नत मिल रही है ना भाई, सच्ची बात है ना। हक तो यही है कि हक अदा ना हुआ, ठीक है, जन्नत की प्राइस तो आपने पे नहीं करी ना, वो तो अपनी तरफ से कुछ देते तो फिर जन्नत की प्राइस पे होती ना, ठीक है। किसी से आप कोई चीज खरीदते हैं तो अगर वही आपको पैसे भी दे दे और आप जो है वो उस चीज के बदले में वो पैसे उसको वापस लौटा दें, तो फिर ये खरीदना कहलाएगा या क्या कहलाएगा, ठीक है। हकीकत तो ये है गालिब में भी ना, इन्होंने बताया खवातीन में यकीन के साथ फरमा रही है कि मिर्जा गालिब का ये शेर है, लेकिन मुझे लगता नहीं है मिर्जा गालिब का शेर था, बहरहाल जिसका भी था, तो हकीकत ये है कि ये वाली बात कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, ये बात तो सिर्फ जान पे तो नहीं अप्लाई होती, ये आमाल पे भी तो अप्लाई होती है, राइट। हम जो भी अमल करते हैं वो हम खुद तो नहीं कर सकते, ठीक है, अमल की तौफीक भी तो अल्लाह ही देते हैं ना, ठीक है। जैसे कि अंबिया अलैहिस्सलाम का तذکرہ अल्लाह ताला ने खुद यहां पर किया कि जब अंबिया के बारे में फरमा रहे हैं कि हमने इब्राहिम को ये दिया, हमने जो है वो इनको ये दिया, हमने उनको वो दिया, और फिर उसके बाद फरमाते हैं कज़ालिक नजल मोहसिनीन, और इसी तरह से हम मोहसिनीन को जजा देते हैं। ठीक है, तो हक तो ये है कि जजा नहीं मिलनी चाहिए थी, ठीक है ना। अच्छा, उनकी बात क्यों करें भाई, वो तो बेअदबी हो जाएगी, वो तो अम्बिया अलैहिस्सलाम है। अपनी बात करते हैं ना, अपनी बात करते हैं कि क्या हम जन्नत को अपने लिए जस्टिफाई कर सकते हैं कभी? क्या हम अल्लाह ताला की किसी नेमत को अपने लिए जस्टिफाई कर सकते हैं कि यस वी डिजर्व दिस नेमत, क्योंकि मैंने इसकी पेमेंट करी है, मैंने अपनी तरफ से इसका जो है वो मुआवजा दिया है, चाहे कैश में दिया हो चाहे काइंड में दिया हो। बता ना, कैश और काइंड, तो कैश तो चलो पैसे की शक्ल में आपने दिया, लेकिन काइंड भी तो होता है ना। काइंड का मतलब ये होता है आपने कोई ऐसा अमल किया कि जिसके बदले में आपको कोई जजा मिले, लेकिन अमल हमने अपनी तरफ से तो नहीं किया, वो अल्लाह की तौफीक से किया। सच्ची बात यह है, हक तो ये है कि ये ना समझ में आने वाली बात है कि हमें क्यों सवाब दिया जाए, हमें सवाब क्यों दिया जाए, राइट? ये समझ में आने वाली बात है। ठीक है, इसी वजह से जिसको अल्लाह ताला हकीकत का इल्म अता फरमाते हैं ना, हकीकत का इल्म, तो फिर वो कभी यानी अपने बारे में गलतफहमी का शिकार नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी नेक काम करेगा वो हमेशा ही डरता रहेगा कि अल्लाह मैंने कौन सा काम कर दिया है? आप तो, आपको तो कोई जरूरत नहीं है मेरे इस काम की, आपने जो मैंने किया वो भी आपकी मेहरबानी से किया, वरना तो। तो ये कुरान अजीम शान को जब तदब्बुर से पढ़ते हैं ना, तो फिर इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते फिर। ठीक है, अच्छा तो आगे पढ़ते हैं कि पहले जमाने में, ये तो हमने पढ़ लिया ना कि, और जब ये हिदायत पर चले, यानी कौन सा अपनी मेहनत से चले, कौन सा अपनी दी हुई टांगों से चले, है ना, अल्लाह ताला की दी हुई टांगों से चले, अल्लाह ताला के दिए हुए दिमाग से जो है वो उन्होंने सोचा, काम किया, जो कुछ भी किया, तो फिर हमने उनको जजाए खैर भी दे दी, मिसले सवाब और ज्यादा कुर्ब के। और जिस तरह नेक कामों पर उनको जजा दी, इसी तरह हमारी आदत है कि हम नेक काम करने वालों को मुनासिब जजा दिया करते हैं, और नीज एक यहाँ पे था ना मूसा हारून था, और जब ये हिदायत पर चले तो हमने उनको जजाए खैर भी दी, मिसल सवाब वह ज्यादा है कुर्ब के, यानी सवाब भी दिया और अपने ना कुर्ब भी हमने उनको ज्यादा अता फरमा दिया। और जिस तरह नेक काम पर उनको जजा दी, इसी तरह जिस तरह नेक काम पर उनको जजा दी, इसी तरह हमारी आदत है कि हम नेक काम करने वालों को मुनासिब जजा दिया करते हैं। ठीक है, कजालिक नजल मोहसिनीन, सारे नेक काम करने वालों को हम जजा दिया करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ नबी थे इस वजह से उनको जजा दी, तुमको नहीं देंगे, तुम नबी नहीं थे, तुमको हमने नबी नहीं बनाया, तुमको नहीं देंगे हम जजा, नहीं, बल्कि हम सारे नेक काम करने वालों को ऐसी जजा दिया करते हैं जैसे हमने नबियों को दी थी। क्वांटिटी माइट बी डिफरेंट, बट ऐसा नहीं है कि तुमको नहीं देंगे। अच्छा, आरजी दुनिया में आरजी नौयत के आमाल के बदले में दाइमी जन्नत, ठीक है, दाइमी जन्नत के हम हकदार कैसे हो सकते हैं? ये तो बस अल्लाह का ही फजल हो सकता है। ठीक है, हम तो आरजी जन्नत के भी हकदार नहीं हो सकते, दायमी जन्नत तो दूर की बात, हम तो आरजी जन्नत की भी हकदार नहीं हो सकते। ठीक है, ये भी अल्लाह ही का फजल है कि आरजी जो है ना दुनिया में भी तो माशाल्लाह अल्लाह ताला दिल का इत्मीनान अता फरमा देते हैं, जन्नत जैसा जो है वो माहौल अता फरमा देते हैं, आरजी है ना, तो क्या हम इसके हकदार हैं? नहीं, हम इसके भी हकदार नहीं। ठीक है, तो फरमाया कि हमने काम करने वालों को मुनासिब जा दिया, और नीज हमने तरीक हक की हिदायत की जकरिया अलैहिस्सलाम का, आगे फिर अल्लाह ताला और नबियों का जिक्र कर रहे हैं, जकरिया अलैहिस्सलाम और उनके साहबजादा यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को और इलियास अलैहिस्सलाम को, और ये के सब हजरात पूरे शाइस्ता लोगों में से थे, कुल्लुम मिनस सालिहीन। सालिहीन की तर्जुमा हजरत यहाँ पे शाइस्ता लोगों से किया है, अच्छे। बाखलाक लोग थे। और नीज हमने तरीक हक की हिदायत की इस्माईल अलैहिस्सलाम को, और यसा अलैहिस्सलाम को, और यूनुस अलैहिस्सलाम को, और लूत अलैहिस्सलाम को, उनमें से हर एक को उन जमानों के तमाम जहान वालों पर नबूवत से हमने फजीलत दी, उन सबको नबी बनाया, जिससे कि वो बाकी सारे लोगों के ऊपर अफजल हो गए। और नीज इन हजरात मजकूरीन के कुछ बाप दादों को और कुछ औलाद को और कुछ भाइयों को तरीक हक की हमने हिदायत की, और हमने उन सबको राह रास यानी दीन हक की हिदायत की। और वो दीन जिनकी इन सबको हिदायत हुई थी, अल्लाह की जानिब से जो हिदायत होती है वही दीन तो यानी बनी इसराइल के जो है ना, वो समझ लें कि इन अल्फाज के जरिए से अल्लाह ताला ने सबको यहाँ कवर कर लिया, ठीक है, क्योंकि जिनका यहाँ पे नाम नहीं भी जिक्र है वो भी इन मजकूर लोगों के, जिनका यहाँ नाम जिक्र है, उनके कोई ना कोई आबा में से बनते थे, या उनकी जुरियात में से बनते थे, या उनके अखवान में से बनते थे, तो वो या के एवरी वन इज कवर्ड, ठीक है ना। ये कुरान मजीद का एजाज है, चंद अल्फाज के अंदर 10,000 से ज्यादा लोगों को समेट दिया अल्लाह ताला ने, ठीक है। अच्छा, और हमने इन सबको राह रास यानी दीन हक की हिदायत की, और वो दीन जिसकी इन सबको हिदायत हुई थी, अल्लाह की जानिब से जो हिदायत होती है वही दीन है। ज़ालिका हुदुल्लाही यहदी बिही मन यशाउ मिन इबाद, ठीक है, यानी जो अल्लाह की तरफ से हिदायत होती है वही हिदायत होती है। मीडिया की तरफ से जो हिदायत होती है ना, वो हिदायत नहीं। आज हमारे लिए रेलेवेंट बात क्या है इसमें, कि जो हिदायत अल्लाह से होगी ना वही हिदायत होगी, जो मीडिया से हिदायत होगी ना वो हिदायत नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि हमने अपनी हिदायत का जरिया जो है वो मीडिया को बनाया, ठीक है। क्या है वो नक्कारे खुदा समझो, क्या था वो, क्या है भाई वो मुहावरा, किसको नकारे खुदा समझो, आवाज हक को, क्या है? अच्छा, तो मीडिया में जो भी चल रहा है बस वही नकारे खुदा माना हुआ है आपने। भाई नकारे खुदा जो है वो तो कुरान और हदीस से हमें मिलता है ना, ठीक है। जुबान खल्क को नकारे खुदा समझो, जज़ाकुमुल्लाह, ठीक है। जुबान खल्क जो है वो मीडिया, सोशल मीडिया, ठीक है ना। पहले कहते थे मीडिया जो है ना ये तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है तो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो मीडिया जो है वो कॉरपोरेशन कंट्रोल्ड है तो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब सोशल मीडिया आया तो सब जो है वो समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है वो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड नहीं है, क्योंकि ये जो है वो कॉरपोरेशन कंट्रोल्ड नहीं है, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। कैसे भाई, क्यों कर सकते हैं भाई इस पर ट्रस्ट है? कि हम अपने आप को देखा है कभी गरेबान में झांक करके देखा है अपने आप को, कितने सच्चे हो तुम? तो जब तुम सोशल मीडिया पे जाके बोलते हो तो तुम सच्चे हो जाते हो उस वक्त, जब तुम खुद सच्चे नहीं हो सकते सोशल मीडिया पे जाकर के, तो दूसरा इंसान भी तो तुम्हारे जैसा ही है ना। कौन सा नेक अल्लाह के औलिया बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो सच बोलते हैं, ठीक है, और कौन से जो है वो जिस तरह अपने गिरेबान में झांक के देखें, तुम्हें कितना इल्म है, क्या इल्म है हकीकत, क्या क्या इल्म है, जिस तरह खुद जाहिल है। भाई दूसरों को भी तो अपने ऊपर इस मामले में कयास करना बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया के मामले में दूसरों को अपने ऊपर कयास करो, क्योंकि सोशल मीडिया पे अल्लाह के वली नहीं बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अकाबिर उलमाए हक नहीं बैठे हुए, सोशल मीडिया के ऊपर अकले सलीम और कलबे सलीम वाले लोग नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। बेशक अवाम बैठे हुए हो, अगर अवाम बैठे हुए भी हो वैसे तो वहां पर भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इन्फ्लुएंसेस मौजूद होते हैं, ठीक है। दज्जाल कंट्रोल्ड, दज्जाली निजाम के कंट्रोल्ड इन्फ्लुएंसर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर अवाम भी हो, खाली अवाम भी हो हमारे आपके जैसे, तो कौन सा जो है वो अल्लाह के औलिया और अकले सलीम और कल्बे सलीम वाले लोग हैं, ठीक है। तो क्यों इन लोगों की बातों के ऊपर जो आमन्ना सद्दकना वो कह करके बैठे हुए होते हो, ठीक है। कुरान की जो है वो तुमने रद्द किया हुआ है, कुरान मजीद को तुमने, ठीक है। तो कुरान मजीद में जो है वो अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है कि जी इदा जा फास बिना बे फतबैन, या इन तो बैठ करके जो है वो अपना ईमान खड्डे में डाल रहे हैं सारे के सारे बैठ करके, कि किस बुनियाद पर? उधर देखा था जाके, तुमने देखा है कभी वहां पे हुआ क्या है? हैं, जो तुम्हें एआई जनरेटेड वीडियो दिखा रहे हैं या जो है वो मैनिपुलेटेड किस्म की जो भी चीज दिखा रहे हैं, उससे जो है वो आमन्ना व सद्दकना, नहीं तो ईमान तुम्हारा उसी पर होगा, तो उसी से फिर जजाए खैर लेकर के आना, जब कब्र में जाना तो उसी से फिर अपना हिसाब करवाना जिसके ऊपर तुमने ईमान लेकर के आया हुआ है। ठीक है, तो जहालत की हद होती है कोई यार, मतलब कोई एक से एक है ना अल्लाह को राजी करने के शौक में जो है वो इधर भी आते हैं, क्लासे भी ले रहे होते हैं, और साथ साथ जो है ना वो इस किस्म का उन्होंने अपना रवैया भी बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला को आप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अल्लाह ताला को अल्लाह के दीन को आप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं और किसी का कोई नहीं बिगाड़ रहे। ठीक है, अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे ईमान लाने वाला वाला गुनाह इस वक्त बड़े बड़े दाढ़ी लंबे लंबी दाढ़ियों वाले जो कर रहे हैं ना ये वाली हरकत, तो तौबा करें, उनकी दाढ़ियां उनके काम नहीं आएंगी। ठीक है, और किताबें भी पढ़ पढ़ करके जो है ना, किताबें भी पढ़ी हुई हैं, उनके अंदर सारे हकायक मौजूद हैं, कुरान और हदीस के, अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई हिदायत सब मौजूद है उसके अंदर, लेकिन पढ़ करके सनद भी ले ली है फिर भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ईमान करके आए हुए। ठीक है, उसके ऊपर डबल अजाब होगा ऐसे इंसान के ऊपर, डबल अजाब होगा, दोहरा अजाब होगा ऐसे इंसान के ऊपर। ठीक है, इल्म के बावजूद जो है वो जहालत के अंदर में, अला इल्म क्या है वो आयत, ठीक है, अल्लाह ताला ने खत्म अला कुलूबहिम, उनके दिलों के ऊपर जो है ना वो खत्म लगा दी, मोहर लगा दी, अला इल्मिन, बावजूद इसके कि उनके पास इल्म था, बावजूद कि उन्होंने किताबें पढ़ी हुई थी, बावजूद कि उन्होंने जो है वो सनदें लाया उठाई हुई थी और नंबर्स लेकर के आए हुए थे, लेकिन बिल्कुल उसूल के खिलाफ जाकर के जो है ना वो जहालत के जो है वो काम करना शुरू हो गए, बस बेड़ा गरक हो गया उनका। ठीक है जी, पता नहीं क्या मामला चल रहा है, तो भाई हुदा अल्लाह वल हुदा, वल हुदा अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आई हुई है ना, जो कुरान मजीद और कुरान मजीद की फिर तफसीर में जो हमारे अकाबरीन वशायख ने जैसे उसकी तफसीर समझाई है, ये अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत। ठीक है ना, कुरान हदीस इजमा व कयास, ये है माखज अल्लाह की हिदायत के, ये माखद है, यहां से हम अल्लाह की हिदायत के, इजमा और कयास भी इसके अंदर शामिल। ठीक है ना, ये अखबारों से नहीं हिदायत मिलती। तो फरमाया कि हमने इन सबको राह रास यानी दीन हक की हिदायत दी, और वो दीन जिनकी इन सबको हिदायत हुई थी अल्लाह की जानिब से जो हिदायत होती है, वही दीन अपने बंदों में से जिसको चाहे उसकी हिदायत यानी मंजिल पर पहुंचाने की सूरत में करता है। चुनाचे अब जो लोग मौजूद हैं उनको भी इसी की हिदायत इस माने से हुई कि उनको सही रास्ता दिखा दिया, फिर मंजिल पर पहुंचना या ना पहुंचना उनका काम, यानी जिन्होंने कबूल किया वो मंजिल पर भी पहुंच गए, और जिन्होंने उसको रद्द कर दिया, सुनते हैं लेकिन बिल्कुल सुनी अनसुनी कर देते हैं या इनकार ही कर देते हैं, वो फिर बर्बाद हो गए, मगर उनमें से बाज ने उसको छोड़कर शिर्क इख्तियार कर लिया। ठीक है, यानी कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, दनादन तिलावतें भी कर रहे हैं, लेकिन हिदायत कहाँ से ले रहे हैं? सोशल मीडिया से लेकर ले रहे हैं। क्यों, कुरान मजीद तुम्हारी हिदायत के लिए काफी नहीं है क्या? सिर्फ तिलावत के लिए कुरान मजीद, हिदायत कहीं और से लोगे जाकर के, तो ये तो फिर कुरान मजीद को समझ लिया ना कि नाकिस है, कुरान मजीद पूरी हिदायत नहीं दे सकता, उसके लिए जो है वो हमें सोशल मीडिया को भी रुजू करना पड़ेगा, और सोशल मीडिया से हत्ता के कुरान मजीद के खिलाफ कोई बात आ रही होगी फिर भी हम सोशल मीडिया को ले लेंगे, नऊज बिल्ला, क्यों? कुरान मजीद नाकिस है, अल्लाह का कलाम जो है वो नाकिस है, यानी अल्लाह नाकिस है, क्योंकि अल्लाह का कलाम जो है वो अल्लाह की सिफत है, अगर कलाम को तुम नाकिस कहोगे तो इसका मतलब है तुमने अल्लाह ताला के जात को भी जो है नाकिस कह दिया, इसी को तो शिर्क कहते हैं, इसी को तो शिर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो शिर्क कर रहे हैं, हम शिर्क कर रहे हैं। ठीक है, वलो अशरकू लहबित अनहुम मा कानू यअमलून, और जिसने शिर्क किया ना, ठीक है, तो उसने लकद हबित, उसने जो है वो सब जाया कर दिया। ये क्या था जो हमने रमदन, भाई देखे आज का जो दौर है ना इसमें बुनियादों की तरफ पलटने की जरूरत है, अपना ईमान बचाने के लिए भी, और अगर आप किसी दूसरे के ऊपर किसी दूसरे से भी बात करना चाह रहे हैं ना, अखबारों की बुनियाद पर बात नहीं कर सकते आप, खबरों की बुनियाद पर बात नहीं कर सकते, बिल्कुल बेस पे लेकर के जाना पड़ेगा। अगर आप किसी का भला चाहते हैं ना, उसको समझाना चाहते हैं ना, उसको बिल्कुल बुनियाद पर लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बुनियाद क्या है? ये हबित अमलु, ठीक है ना, यहां पर भी फरमाया ना, वलो अशरकू लहबित अनहुम, तो भाई उनको शिर्क समझाना पड़ेगा कि शिर्क क्या चीज होती है, कितना बुनियाद है, ईमान क्या चीज होती है, तौहीद क्या चीज होती है, शिर्क क्या चीज। हम समझते हैं कि सबको पता है सारी बात, ये बातें तो सबको पता है। अब खबरों की बातें करते हैं, राइट, खबरों में हम उनको बताते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे है, बाकी सारी बातें तो लोगों को पहले से पता है, नहीं ऐसा नहीं है, लोगों को ईमान की तारीफ नहीं पता, लोगों को तौहीद का नहीं पता कि क्या चीज होती है, लोगों को शिर्क का नहीं पता ये क्या चीज होती है, ठीक है, लोगों को कुफर का नहीं पता कि ये क्या चीज होती है। आप किस किन चीजों की बातें कर रहे हैं उनसे, उनको पता ही नहीं कि कुफर क्या चीज होती है, ठीक है ना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वमन यकफुर बिल ईमान फकद हबित अमलु, यही हबिता का लफ्ज जो है वो अल्लाह ताला ने भी सूरह मायदा के अंदर भी, इसी इसी जिल्द के अंदर जो पहले सूरह मायदा है, कि जिसने ईमान की नफी करी, क्या मतलब नबी अलैहिस्सलाम से जो बातें पहुंची हैं उनकी नफी कर दी ना, बस उसके सारे आमाल जाया। अब वो तिलावतें करता रहे करता रहे करता रहे, जीरो, अंडा मिलेगा अंडा, तिलावतें करने पर अंडा मिलेगा, क्या मिलेगा, अंडा। अंडा का मतलब क्या होता है, अंडा का मतलब मुर्गी का अंडा नहीं मिलेगा, जीरो मार्क्स मिलेंगे, जीरो मार्क्स। मुर्गी का अंडा भी जो है ना, वो पता नहीं पाकिस्तान में तो बहुत महंगा मिलता है अब, नहीं मुर्गी का अंडा भी नहीं मिलेगा, जीरो मार्क्स मिलेंगे, यानी जीरो सवाब मिलेगा इतनी तिलावतें करने के ऊपर, अगर ईमान की नफी करी हुई है, यानी नबी अलैहिस्सलाम की बात की नफी करी हुई है, ठीक है। अफराई इन्होंने इसकी वो वाली आयत भी, इल्म वालों के लिए जो आयत नाजिल होगी ना, अफराई था मैंने तखदा इलाहु हवाहु व अवल्लहु अला इल्मिन, और अल्लाह ताला ने उसको गुमराह कर दिया, अला इल्मिन, अला इल्मिन का मतलब बावजूद इल्म के अल्लाह ताला ने उसको गुमराह कर दिया, क्यों, इसलिए कि उसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, ख्वाहिशात को जो है वो खुदा बना दिया, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर ब्राउजिंग करना उसकी ख्वाहिश थी, ठीक है, उसकी ख्वाहिश थी कि बस हुकूमत कायम हो जाए और काफिर को ललकार दिया जाए और काफिर से पंगा ले लिया जाए, बस ये उसकी ख्वाहिश थी, ईमान ईमान का पता नहीं, खुद काफिर है लेकिन काफिर से पंगा लेने की कोशिश उसको बड़ी अच्छी लगती है, खुद काफिर है क्योंकि ईमान की नफी कर चुका है, ठीक है, तो ये उसकी अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाया हुआ है, तो इस वजह से जो उसका इल्म है भी ना, अल्लाह ताला ने उसके बावजूद उसको गुमराह कर दिया, और उसके कानों के ऊपर जो है ना, वो अल्लाह ताला ने सील बिठा दी, वकल भी, और उसके दिल के ऊपर भी सील लगा दी, वो जाला अला बसरी ही पेशावा, और उसकी आंखों के सामने जो है ना वो पर्दे डाल दिए उसके, तो ये खुदा का खौफ करने की जरूरत है हमें, ईमान सीखने की जरूरत है भाई, ईमान बनाने की नहीं, ईमान सीखने की जरूरत है, जब सीखेंगे उसके बाद बना सकेंगे, अभी तो ईमान ही जो है वो हमारा पता नहीं कहाँ पर है। अच्छा, तो बाज ने इसको छोड़कर शिर्क इख्तियार कर लिया, और शिर्क इस कदर नापसंदीदा चीज है, यह हमला इस कदर नापसंदीदा चीज है कि गैर अंबिया तो किस शुमार में है, अगर फर्जन ये हजरात अंबियाए मस्कूरीन भी नऊज बिल्ला शिर्क करते, तो जो कुछ ये नेक आमाल किया करते थे उनसे सब अकारत हो जाता, ठीक है, इन नबियों के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं ना, अगर ये भी करते ना शिर्क, इनके भी सारे आमाल हम जीरो कर देते, किया नहीं उन्होंने शिर्क ऑफ कोर्स, लेकिन अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, तो उनके इस खेत की गाजर मुर्गी हो। तो आगे मसला नबूवत की तरफ आ रहा है कि जितने मजकूर हुए ऐसे थे कि हमने उनके मजमुए को किताब आसमानी और हिकमत के उलूम और नबूवत अता की थी, तो नबूवत अमरे अजीब नहीं जो ये काफिर लोग आपके मुनकिर हो रहे हैं, क्योंकि नजायर मौजूद हैं, वलाइक लदीना आतेना हम किताब और हकम व नबूवत, ठीक है भाई, इन सबको हमने नबूवत दी थी, हमने आपको भी नबूवत दी थी, क्यों इनको इतना तकलीफ हो रही है आपको नबूवत मिल जाने के ऊपर, भाई जब अल्लाह ताला ने निशानियां दे दी जिसका कि इन काफिरों में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता था कि हाँ वाकई ये काम जो है नबी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो वो मान गए थे कि हाँ ये नबी हैं, लेकिन इकरार नहीं करते थे, बस इकरार नहीं करते थे, ये सारा मसला था। तो फरमाते हैं कि अगर नजीर मौजूद यानी दलाइल मौजूद होने पर भी ये लोग आपकी नबूवत का इनकार करें, आप गम ना कीजिए, क्योंकि हमने इसके मानने के लिए ऐसे बहुत लोग मुकर्रर कर दिए हैं, यानी मुहाजरीन अंसार, जो इसके मुनकर नहीं, जो आप पर ईमान ले आए ना, तो अब आप अपनी तवज्जो उनके ऊपर रखिए, ये लोग आपकी बात नहीं मान रहे, तो ज्यादा परेशान मत होइए उनके बारे में। मारूफ मसाइल में हजरत मुफ्ती शफी अहमदुल्लाह देखते हैं आयात की कि आयात मस्कूरा से पहली आयात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा अपने बाप आजर और पूरी कौम नमरूद के साथ मशहूर था, क्योंकि उस वक्त का बादशाह जो था वो नमरूद था, तो कौम नमरूद फरमाया, जिसमें उनकी बुत परस्ती और नजूम परस्ती के खिलाफ यकीनी शहादतें पेश करने के बाद आयात मज़कूरा में अपनी कौम को खिताब फरमाया कि तुम मुझे अपने मतों से डराते हो, ठीक है। तो यकीनी शहादतें भाई उस जमाने के लोगों के लिए और उन लोगों ने जिनको अपने माबूद बनाया हुआ था उनके लिए वो यकीनी शहादतें थी। आज हम उनको पढ़े तो हम कहेंगे यार ये तो कोई कौन सी इनके अंदर यकीनी शहादतें हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रही कि ये किस तरीके से जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी नफी कर दी। हमें ना समझ में आए, बेशक समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ना भी समझ में आए तो भाई ये आज से 4,000 साल पहले की बात हो रही है, उस वक्त के लोगों के लिए जो रेलिवेंट दलाइल थे वो सारे के सारे उन्होंने पेश किए, ठीक है ना। आज के जो माबूदाने बातिना हैं, आज के लोगों के जो माबूदाने बातिना हैं, तो आज जो है वो हमें उनके लिए जो है वो यकीनी शहादतें पेश करनी पड़ेंगी ना, ठीक है। यहां पर तो हमें उसूल बताया जा रहा है कि भाई जब तुम बात करो तो दलाइल के साथ बात करो, गोंगिया मत मारा करो, आयमाय शाय मत किया करो, दलाइल के साथ बात किया करो, खसूसन ऐसी जगह पर जहां पर दलाइल की जरूरत भी महसूस हो रही हो, वहां पे होमवर्क करके आओ, अपना केस बिल्ड करो, फिर उसके बाद उनसे बात करो, ठीक है। तो वही फरमा रहे कि यकीनी शहादतें पेश करने के बाद आयात मज़कूरा में अपनी कौम को खिताब फरमाया कि तुम मुझे अपने बुतों से डराते हो कि मैं उनका इनकार करूंगा तो ये मुझे बर्बाद कर देंगे, हालांकि ना बुतों में इसकी कुदरत है और ना मैंने कोई काम ऐसा किया है कि जिसके नतीजे में मुझे कोई मुसीबत पहुंचे, बल्कि डरना तुम्हें चाहिए कि तुमने जुर्म भी ऐसा सख्त किया है कि अल्लाह की मखलूक बल्कि मखलूक की मसनूआत को खुदा का शरीक और बराबर कर दिया, ठीक है। यानी एक तो अल्लाह की मखलूक थी ना सूरज चांद सितारे, ये इन्होंने तो नहीं बनाए थे, ये तो अल्लाह ही ने बनाए हैं, लेकिन बुत जो हैं ये तो अल्लाह की मखलूक के भी बनाए हुए थे, तो तुमने अल्लाह के बराबर जो है वो अल्लाह की मखलूक को और मखलूक की बनाई हुई मसनूआत को अल्लाह के बराबर कर दिया, क्योंकि ये बुत जो थे ना इनको मखलूक नहीं कहा, इनको मखलूक नहीं कहा जा सकता, ठीक है, बल्कि मखलूक को जोड़ जोड़ करके कोई चीज बनाई जाती है ना तो उसको फिर मसनूआत कहा जाता है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स कहा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मसनूआत का लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल किया, उनको मसनूआत को भी तुमने अल्लाह के बराबर बनाया है, सुभान अल्लाह, अजीब। और फिर खुदा ताला का अलीम व खबीर और कादिर मुतलक होना भी किसी अकल वाले से मख्फी नहीं, तो अब तुम खुद सोच कर बतलाओ कि अमन और इत्मीनान का मुस्तहिक कौन है और डरना किसको चाहिए, ठीक है ना। मैं मुझे डरना चाहिए कि तुम्हें डरना चाहिए। इन आयात में से पहली आयत में ये मजमून इरशाद फरमाया है कि अजाब से मामून व मुतमइन सिर्फ वही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाएं और फिर अपने ईमान में किसी जुल्म की मिलावट ना करें। हदीस में है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबे कराम सहम गए, ठीक है, सहाबे कराम सहम गए, मिलावट ना करें, ठीक है। देखें जो ईमान वाला गुनाह करता है ना, तो वो गुनाह जो है वो उसके ईमान के साथ मिलावट नहीं हो जाती, ठीक है, गुनाह उस जो ईमान होता है ना उसका वो बिल्कुल यानी अलग रहता है, और गुनाह जो होता है वो उसके ऊपर एक फासले के साथ समझ लें एक अमल होता है उसका, ये लिबास की तरह से नहीं हो जाता अगर ईमान मौजूद है। तो यहाँ पे जो लिख रहे हैं ना, तो उसमें क्या है कि सहाबा कराम अगरचे कि वो ये काम करते नहीं थे, लेकिन खौफ था उनको, फिक्र थी उनको, इस वजह से वो सहम गए बात सुनकर के, और अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन ऐसा है जिसने कोई जुल्म अपनी जान पर बजरिए गुनाह के नहीं किया। यानी हम सब ने कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं जो है वो गुनाह किया हुआ होता है, कर लेते हैं, हो जाता है, ये तो हमने अपनी जान पर जुल्म किया हुआ है। और इस आयत में अजाब से मामून होने की ये शर्त है कि ईमान के साथ कोई जुल्म ना किया हो, तो फिर हमारी निजात की क्या सबील है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम आयत का सही मफहूम नहीं समझे। क्या फरमाया, किसको फरमा रहे हैं? अरब, राइट? 1400 साल पहले के जो अरब थे, जो कि आजकल की बंगाली अरबी नहीं बोलते थे, राइट? शोया शोया वाली अरबी नहीं बोलते थे, किदा किदा वाली अरबी नहीं बोलते थे, वो असली अरबी बोलते थे, समझते थे, हत्ता कि अरब में उनके बहुत सारे लोग जो है वो शेर व शायरी किया करते थे अरबी जुबान में, ठीक है ना? ना चाहे जाए के उर्दू बोलने वाले हों या अंग्रेजी बोलने वाले हों, कि भाई तुम्हें जो है वो तुम चूंकि उर्दू बोलते हो ना, इस वजह से तुम्हें अरबी की आयत समझ में नहीं आई, ऐसा तो नहीं था ना, वो तो असल अरब थे ना, ठीक है? तो और उनमें से अक्सर जो है वो कुरैश भी थे, जिनकी लुगत में जो है वो कुरान मजीद नाजिल हुआ था। अरबी में भी मुख्तलिफ लुगतें थी, तो अरबी कुरैश की लुगत में कुरान मजीद नाजिल हुआ था, उनको कह रहे हैं तुम नहीं समझे इस बात को, ठीक है? तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें समझ में आ गई बात, हत्ता कि हम उर्दू जुबान के तर्जुमे के ऊपर जो है ना वो पूरा कुरान समझते हैं कि हमें समझ में आ गया। और आज तो पिछले दिनों बात भी हुई थी कि अंग्रेजी जुबान के अंदर जो है वो हम कुरान के तर्जुमे को समझते हैं कि हमें समझ में आ गई बात, ठीक है? तो सहाबा को फरमाया ने मेरे साथ, तुम आयत का सही मफहूम नहीं समझे, आयत में जुल्म से मुराद शिर्क, जैसे कि एक दूसरी आयत में इरशाद है, इन शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, ठीक है? तो मफहूम जो है ना फिर लिटरल ट्रांसलेशन की बुनियाद पर भी अक्सर समझ में नहीं आता। लिटरल ट्रांसलेशन की भी है, हमें तो वो भी सही तरह से मौजूद नहीं है हमारे पास, यानी हमें इतना अपनी जुबान का भी इतना इल्म नहीं होता। हकीकत यह है कि हमें तो उर्दू का इतना इल्म भी नहीं है, और अंग्रेजों को तो अंग्रेजी का भी इतना इल्म नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से ट्रांसलेशन भी होते हैं ना, वो भी अधूरी होती है। लेकिन अगर ट्रांसलेशन अच्छी हो भी जाए, फिर भी कॉन्टेक्स्ट के बगैर मफहूम समझ नहीं आता। कॉन्टेक्स्ट, सियाक व सबाक, ये ट्रांसलेशन के अलावा एक दर्जा होता है। तो सही मफहूम समझने के लिए दोनों चीजें जो है वो सही होनी चाहिए, ट्रांसलेशन भी, अगर आप किसी दूसरे लैंग्वेज के बंदे हैं ट्रांसलेशन भी सही होनी चाहिए, और कॉन्टेक्स्ट भी होना चाहिए आपके पास। इसलिए मुराद आयत की ये है, नहीं सिर्फ फरमा रहे हैं, इसलिए मुराद आयत की है कि जो शख्स ईमान लाए और फिर उसमें अल्लाह ताला की जात व सिफात में किसी को शरीक न ठहराए, वो अजाब से मामून और हिदायत याफ्ता है। यानी मेरी बात मान मान ले, और फिर ये कि मेरी किसी बात की नफी ना करे। क्या मतलब? कि इजमाली तौर पर नबी अलैहिस्सलाम को मान लिया, हाई लेवल या कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तलब से मुनासिब नहीं है, बल्कि हाई लेवल बोलने या इजमाली कलब ज्यादा प्रॉपर है, कि इजमाली तौर पर नबी अलैहिस्सलाम का अल्लाह का रसूल मान लिया, ठीक है? लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फिर जो बातें बताई हैं अल्लाह के बारे में, उनमें कहीं कुछ डंडी मार दी, चेंज कर दिया। इजमाली तौर पे तो हाँ, मैं नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानता हूं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की किसी बात का इनकार कर दिया कि मैं इस वाली बात को नहीं मानता, या जो फरमाया था उसकी बजाय कुछ और कह रहा है कि नहीं ऐसे है अल्लाह, ऐसे है, हालांकि इजमाली तौर पर नबी अलैहिस्सलाम का अल्लाह का रसूल मान रहा है, तो फिर अगर ऐसे किया तो भी काफी, ठीक है? तो फिर वो अजाब का मुस्तहिक हो जाएगा, ठीक है? और यहां पर जिस अजाब की बात हो रही है वो हमेशा हमेशा वाले अजाब की बात हो रही है, क्योंकि ईमान की नफी करनी हो तो फिर वो तो हमेशा हमेशा के अजाब का मामला है। है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स ईमानदार, यानी ईमानदार का मतलब क्या, मेरी रसालत पर ईमान लेकर क्या है, लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि फिर अल्लाह ताला की जात सिफात में किसी को शरीक ना ठहराए, यानी मेरी बातों की भी जो है वो ताईद करे, तकफीर ना करे मेरी किसी भी बात की, तो फिर वो अजाब से मामून और हिदायत याफ्ता है। ठीक है, इसी वजह से कुफर की तारीफ क्या होती है कि नबी अलैहिस्सलाम की किसी एक हुक्म को भी नहीं माना, क्योंकि भाई क्यों इतना सख्त क्यों है मामला, कि एक हुक्म को भी अमल करने की बात नहीं हो रही। अमल में एक सुस्ती कोताही होने से इंसान कोई काफिर नहीं होता, इनकार करने से काफिर होता है। ठीक है, चाहे वो किसी एक हुक्म का भी इनकार किया जाए। क्यों, ऐसा क्यों है कि एक हुक्म का भी इनकार करने से जो है वो फकद हबित अमलु, सारे अमाल जीरो हो जाए, क्यों? ये चले आप में से कोई बता दे तो अच्छा हो जाएगा, फिर हम क्लास रोक देंगे। एक हुक्म का भी अगर इनकार किया तो फिर सारे अमाल क्यों जाया हो जाते हैं और ईमान से खारिज क्यों हो जाते हैं सिर्फ एक हुक्म का इनकार करने से? नबी अलैहिस्सलाम जैसे नमाजें पांच नहीं है चार है या छह हैं, फर्ज नमाजें पांच नहीं है छह हैं, तो हुक्म का इनकार हो गया, क्योंकि हुक्म यह है पांच नमाजें फर्ज, ठीक है ना, ये कह रहा नहीं छह फर्ज हैं, इनकार हो गया, काफिर हो गया ये। और इसके फिर सिर्फ नमाजें जीरो नहीं हो गई, नमाजों का सवाब जीरो नहीं हो गया, बल्कि जकात भी जीरो हो गया, का सवाब भी जीरो हो गया, रोजों का सवाब भी जीरो हो गया, हज का सवाब भी जीरो हो गया, और जो है वो सदका खैरात का सवाब भी जीरो हो गया, और जो है वो तस्बीहात पढ़ने का सवाब भी जीरो हो गया, और जो है वो किसी बेचारे इंसान की मदद करने का सवाब भी जीरो हो गया। किस वजह से? इसने कह दिया था कि नहीं, नमाजें जो है ना वो पांच फर्ज नहीं है बल्कि छह फर्ज है, इस वजह से। क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ये बड़ा खतरनाक सवाल है और ये हमारे लिए बहुत बहुत अहम सवाल है। क्यों ऐसा है? इन्होंने जवाब दिया है कि एतमाद खत्म हो जाता है, लेकिन ये जवाब जो है ना वो अपना ही नहीं, इतना हो हमारे ऊपर इतना समझ में नहीं आएगा। दूसरा जवाब आया, आज खवातीन बड़ी खामोश है, बड़े बड़े माशाल्लाह बोल रहे हैं। तो दूसरा जवाब है, एक हुक्म का इनकार करना मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करना। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर और इलेबोरेट कर दें, शैतान की सफ में शामिल हो जाते हैं। इताअत है इसलिए 100%, अदरवाइज जायज नहीं होता, ये तो मुश्किल हो गया। अच्छा, एतमाद हो, एतमाद को ही ईमान कहते हैं, एतमाद नहीं तो ईमान भी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को झुठला दिया इल्हाद की वजह से। अच्छा, और ख्वातीन में है कि अल्लाह की नाफरमानी की वजह से हमें वैसे ही यकीन रखना है जैसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये ईमान का हिस्सा है, इसका बिना इसके बिना हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार अल्लाह का इनकार है। ईमान की शर्त है कि पूरे के पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ, यानी हर एक की बात पर, हर एक बात पर ईमान लाना जरूरी है, क्योंकि एक हुक्म भी वैसे ही है जैसे सारे हुक्म, क्योंकि मकसद बंदगी है, अब चाहे एक का इनकार करे या सब का एक जैसा ही है। जिनका इनकार, जुज का इनकार कुल का इनकार है। ठीक है, नौजवान ने जवाब दिया, जुज का इनकार कुल का इनकार है। इसी बात को जो है ना वो आप थोड़ा सा अगर रीवर्ड कर दें, दूसरे अल्फाज में बयान कर दें, तो ये सही जवाब है, जुज का इनकार कुल का इनकार। ठीक है, आपने अपने मदरसे वाले लैंग्वेज में जवाब दिया है, तो इस वजह से हम आमियों के लिए भी अगर आप इसको आसान कर दें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए एक हुक्म का इनकार करना अल्लाह ताला के अहकाम का इनकार करना होगा, जो कि कुफर है, कुरान के खिलाफ हो जाएगा, कि रसूलुल्लाह की बात के खिलाफ नहीं करते, जरूरियात दीन का इनकार हो जाएगा। देखें हमारे लिए मसला क्या है कि हम जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात का इनकार भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार, हम एक आध झूठ बोल देने को जो है ना वो अहमियत नहीं देते। ठीक है, हम माशाल्लाह बहुत नेक बन गए हैं, दीनदार बन गए हैं, बहुत सारे गुनाह हमने छोड़ दिए हैं, ठीक है, लेकिन झूठ का गुनाह जो है ना वो हमने नहीं छोड़ा है अभी, वो हम बोल जाते हैं, वो हम बोल जाते हैं, कहीं ना कहीं बोल जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम दीनदार बन गए तो इस वजह से ना हम जो एक आध झूठ है ना तो उसके साथ साथ ही अपने आप को सच्चा समझना शुरू हो जाते हैं। बात समझ में आई? हम दो चार झूठ के साथ ही अपने आप को सच्चा समझना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा शख्स जो है वो सच्चा होता नहीं, ठीक है, जो कि एक आध झूठ बोलता है बाकी झूठ नहीं बोलता, ये शख्स जो है ना ये सच्चा नहीं होता, ये झूठा ही इंसान होता है। अब बात समझ में आ गई? सवाल का जवाब के नबी अलैहिस्सलाम को किसी एक बात में भी झूठा बोलना, नऊज बिल्ला सुम्मा नऊज बिल्ला, किसी एक बात में भी नबी अलैहिस्सलाम को झूठा करार देना, ये नबी अलैहिस्सलाम के कुल को झूठा करार देना है, ठीक है ना, एक बात को भी झूठा करार देना ये कुल को झूठा करार देना है, क्योंकि एक बात में भी झूठ बोलने वाला ये सच्चा इंसान नहीं हो सकता, ये झूठा ही कहलाए, ये झूठा ही कहलाए, ठीक है, होता है ना कि अपने ऊपर कयास करके भी बात समझ में आ जाती है। तो ये एक हुक्म का इनकार जो है वो ईमान से खारिज क्यों कर देता है, ये एक हुक्म का इनकार जो है नबी अलैहिस्सलाम के एक हुक्म को तब्दील करके जो है वो कोई दूसरा हुक्म करार देना, जैसे पांच नमाजें नहीं छह नमाजें हैं, ये सारी चीजों को जीरो क्यों कर देता है, सभ्यतामलहू क्यों कर देता है, क्योंकि एक मामले में भी किसी का अगर झूठ पकड़ा गया इसका मतलब यह कि वो अब सच्चा बंदा नहीं, अब वो सच्चा बंदा नहीं है, वो झूठा ही है। भाई सच्चा तो उस वक्त होगा ना जब वो 100% जो है वो सच, 100% तौरिया जो है ये सच होता है, तौरिया झूठ नहीं होता, नबियों ने या सिद्दीकीन ने जो तौरिया इख्तियार किया है ये झूठ नहीं बोला था उन्होंने, उन्होंने सच बोला था, झूठ का तो 1% भी एहतमाल नहीं है किसी नबी से, 0.01% भी एहतमाल नहीं है किसी नबी से, कोई शख्स जो है वो किसी नबी पर 0.01% भी झूठ कह देता है इसका मतलब ये वो पूरी पूरे नबी को ही झूठा बोल रहा है, पूरे नबी को ही झूठा बोल रहा है, यानी वो नबी को पूरा का पूरा झूठा बोल रहा है। बात समझ में आ गई इंशाल्लाह, ठीक है, ये बताए ना किसी को आजकल तुम जो कर रहे हो ना सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो किसी को वली बना दिया, किसी को तुमने जो है वो शहीद बना दिया, किसी को तुमने जो है वो पता नहीं क्या बना दिया, ठीक है, तो जरा चेक तो करो कि किस किस चीज का इनकार किया है नबी अलैहिस्सलाम की, किस किस बात का इनकार किया, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला का ऐलान है उसका इनकार किया है कि नहीं किया है। और बहुत सारे अहकाम का जो नबी अलैहिस्सलाम से 100% तवातुर के साथ साबित हैं उनका तुमने इनकार कर दिया है, और तुम जो है वो पता नहीं क्या अपने आप को समझे चले जा रहे हो, बेटा जीरो हो गया, जीरो सारा का सारा मामला जीरो हो चुका है, ठीक है, सारा का सारा मामला तुम्हारा जीरो हो चुका है, तौबा करो वापस ईमान में दाखिल हो, तौबा एक अनवाद ही पढ़ लो किसी शेर के किसी जाकर के ना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे ईमान में वापस दाखिल हो जाओगे, वरना ये तमाशे जो है ना ये नहीं चलने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए, वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।